Welcome to First Post Masterclass, our podcast series where elite athletes break down their craft for you. My name is Shubham Pandey and joining me in this episode is former India sailor Arjuna awardee Girdhari Lal Yadav, who is also the chief coach cum technical director in MP Water Sports Academy. He will be discussing with us technicalities of sailing and what goes behind finding the best talent in the sport.
तो सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिया में सेलिंग को लेके, थोड़ा उसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और कैसे सेलिंग शुरू हुई, कैसे सेलिंग आई, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें आप।
जहां तक इंडियन हिस्ट्री का सवाल, मेरे जो हिस्ट्री पर उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सेलिंग की हिस्ट्री काफी एनिशियंट है।
ओके
और मतलब जब हम पास्ट में जाते हैं तो इट्स स्टार्ट फ्रॉम द चोला वंश, चोला से ग्रेट नेवल पावर डेट टाइम इन सेलिंग जो उस समय यूज होती थी, मतलब बोटे जिनको हम याटिंग अभी बोलते हैं, उनका मेन रोल था उसमें, दे आर डूइंग ट्रेडिंग ऑफ गुड्स थ्रू द टू अनदर कंट्री विद द सी रूट्स। डेफिनेटली दे आर यूजिंग द सेल बोट्स, इंजन वगैरह उस समय होते नहीं थे इतने। तो जहां तक हमारे इंडिया में सेलिंग आने का, जो मॉडर्न सेलिंग हम जिसको बोलते हैं आजकल याटिंग, ये ब्रिटिशर्स लाए थे, जो अपने उनका जैसे क्रिकेट की तरह, क्रिकेट को भी वो अपने लेजर टाइम को पास करने के लिए लाए थे। इस तरह सेलिंग भी ब्रिटिशर्स ही लाए हैं, जो आप अगर देखेंगे तो हर एक सिटी में, अगर आप पुराने सिटी, चाहे आप नैनीताल चले जाए, लखनऊ, भोपाल, उन्होंने एक एक जगह क्लब का स्थापित किया था। इवन जो कुछ क्लब तो अभी भी उनके नाम से चले, जैसे बॉम्बे का क्लब रॉयल बॉम्बे यार्ड क्लब एंड मद्रास में रॉयल मद्रास यार्ड क्लब, तो ऐसे कई क्लब उन्होंने बनाए थे। और उसके बाद में धीरे धीरे सेलिंग का उनका, मगर ये अनफॉर्चुनेटली केवल रहा उस समय कोस्टल एरिया में जहां पे सी वगैरह हुआ करते थे। तो सबसे ज्यादा डेवलप किया रॉयल बॉम्बे यार्ड क्लब और रॉयल मुंबई यार्ड क्लब।
तो ये इंडिया कब से सेलिंग में एज अ स्पोर्ट्स परसू करना शुरू किया, और कब से हमारा हम अच्छा करना शुरू कर दिए, कुछ अगर उसके बारे में बताएं।
हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंट वाईआई याटिंग इंडिया रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी एक्ट, अंडर सोसाइटी एक्ट टू सपोर्ट द सेलिंग।
ओके
एंड फ्रॉम दे आफ्टर रजिस्ट्रेशन वी स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द एशियन गेम।
अच्छा।
और जब से हमने एशियन गेम में सेलिंग आई, हमने पार्टिसिपेशन किया एक्सेप्ट वन एशियन गेम, वी हैव मेडल इन ऑल एशियन गेम्स सो फार,
वी हैव मेडल्स इन ऑल एशियन गेम्स दैट वी हैव पार्टिसिपेटेड इन।
या एंड ऑफ कोर्स वी हैव वन द वर्ल्ड टाइटल आल्सो 3 times एंड मेनी अदर मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, दैट इज आल्सो वन द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द सेलिंग। एंड एज फार एज अवार्ड कंसर्न, आई थिंक इन वाटर स्पोर्ट्स वी हैव मैक्सिमम अर्जुन अवार्ड इन राजीव गांधी खेल रत्न।
ओके
स्लोली स्लोली जो प्रोग्रेस हुआ, नाउ वी आर लुकिंग एट द रिजल्ट। जब से याटिंग ऑफ इंडिया का, पहले ये था कि ये सेलिंग ओनली कोस्टल एरिया में थी, लिमिटेड थी, मीन्स आइदर जैसे मैंने जो स्टार्ट किया था आफ्टर ज्वाइनिंग द नेवी।
ओके
और अगर आप अभी देखेंगे तो जो लास्ट एशियन गेम में हमने 3 medals जीते हैं,
राइट,
वो तीनों ही मेडल, मतलब जो लोएस्ट एज 16 years एंड हाइएस्ट एज 24 years, तो मीन्स यूथ आर कमिंग अप, दैट इज द बेस्ट पार्ट फॉर द इंडियन याटिंग।
सर कुछ अपने बारे में बताइए, आपने कैसे सेलिंग स्टार्ट किया, कौन सा ईयर था और कैसे सेलिंग में आए आप? आपने थोड़ा सा बताया नेवी में आप गए थे, तो अगर कुछ आप शुरू से बता सकें।
जी, जहां तक मेरे सेलिंग करियर का सवाल है, आई स्टार्टेड सेलिंग आफ्टर ज्वाइनिंग द इंडियन नेवी एंड आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज ऑफ द इंडियन नेवी, ऑल क्रेडिट गोज टू देम। After joining the Navy, I got the opportunity. बोलते हैं opportunity को आपको grab करना होता है,
right?
और luckily मेरे उस समय उन लोगों से contact में आया जो उस समय के legends है, like फारूक तारापुर, होमी मोती वाला, कमांडर महेश, और हमारे उस समय कोच हुआ था कमांडर मुंगिया।
okay.
तो इन लोगों ने काफी सहयोग भी किया मेरा। और जब नेवी ज्वाइन करने के बाद में, जब मैंने अपना सेलिंग करियर स्टार्ट किया था, उस समय मेरी एज 26-27 years थी।
और कौन से सन की बात होगी, कौन से ईयर की?
हाँ, जॉइन इंडियन नेवी 1986, स्टार्टेड सेलिंग 1995।
ऑलराइट ऑलराइट।
ऑलमोस्ट आफ्टर 9 years ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस
जी.
तो मैं अपनी तरफ से तो पूरा ही मतलब मैं उस तरह जैसे बुक आया था ना प्राइम मिनिस्टर के बारे में मंथली इंसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टर आई एम द इंसिडेंशियल स्पोर्ट्स में जो अपने स्कूल जीवन में कभी मैंने कोई गेम नहीं खेला था.
ओके.
मगर हाँ नेवी ज्वाइन करने के बाद में इसमें मुझे काफी मोटिवेशन भी मिला और अच्छे लोग भी मिले जो मोटिवेट भी करते रहे और मैं धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव सेलिंग में आ गया.
ओके. उसके बाद सर आपने किसी आपके ख्याति के बारे में बताइए कहाँ कहाँ आपने सेलिंग की कितने कितने चैंपियनशिप्स और मेडल्स के बारे में अगर थोड़ा बता सके.
जी 95 में मैंने पहली बार बोट में कदम रखा था और मुझे नेशनल का मेडल जीतने में करीबन 3 साल 98 वाज द गोल्डन ईयर फॉर माय लाइफ. वी वन द नेशनल गोल्ड मेडल इन दैट इज द फर्स्ट टाइम द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर मी.
ओह नाइस.
और उस समय के जो टॉप इवन आशीष मोंगा कमांडर गर्ग जो अभी फुल खेल रत्न अवार्डी दोनों अर्जुन अवार्डी उनको हरा के हमने नेशनल जीता था. और उस समय नेवी की जो टीम थी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी. हम नेवी के अंदर अगर आपने नेवी चैंपियनशिप जीत ली तो ये अज्यूम किया जाता था कि आप नेशनल जीतोगे. जिसने नेशनल जीता वो 100% एशियन गेम में मेडल जीतता.
ओके.
तो और उसके बाद में मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2002 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था जो गोवा में हुई थी.
ओके.
2004 एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल 2006 एशियन चैंपियनशिप गोल्ड एंड एशियन गेम सिल्वर मेडल.
ओके.
अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने 3-4 और वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया को रिप्रेजेंट किया मगर उसमें मेडल नहीं मिल पाया था.
ओके.
एंड फॉर डिफेंस आई एम द फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट फॉर द मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स.
ऑलराइट. फर्स्ट गोल्ड मेडल अक्रॉस स्पोर्ट्स.
हेलो.
अक्रॉस स्पोर्ट्स मतलब सभी स्पोर्ट्स में फर्स्ट मेडलिस्ट.
नहीं मेडल दो नहीं सेलिंग में भी नहीं. उसके पहले इंडिया को कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला था मिलिट्री वर्ल्ड गेम में.
ओके. ओके.
तो हमने जो मेडल जीता था इट वॉज द फर्स्ट. उसके बाद बॉक्सिंग में मिला था और उसके बाद शायद एक आध और जीता था.
अच्छा अच्छा. राइट सर. नेशनल गेम्स के बारे में बताइए कैसे सेलिंग में कितना होता है मतलब कितनी टीम्स हैं क्या प्रोसेस रहता है और कब होता है नेशनल गेम्स नेशनल्स जो होते हैं सेलिंग के.
हर साल याटिंग ऑफ इंडिया इवेंट करवाती है इसको जूनियर एंड सीनियर नेशनल के रूप में मतलब आइदर वे आइदर कम्बाइंड और सेपरेट. और जो पूरी चैंपियनशिप होती है इसमें लगभग सभी क्लासेस एक साथ करवाते ताकि सभी बच्चों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले.
Okay.
अभी जो सेलिंग में 10 क्लासेस हैं जो अलग अलग हैं लेजर लेजर रेडियल 49er 29er 470 420 सो डिफरेंट क्लासेस ऑफ बोर्ड्स. और उसमें सबसे बेस्ट रहता है कि हर एक टीम जो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पेसिफिक गोल.
ओके.
लाइक लास्ट टाइम हमने वी जंप अप इन द 49er एफएक्स और लकीली दोनों में ही हमको एशियन गेम में मेडल मिले. इट्स ए न्यू क्लासेस फॉर द वर्ल्ड एंड फर्स्ट टाइम इंक्लूडेड इन द एशियन गेम्स. और इसके अलावा जो एक रिदम बना रहे कंटिन्यूटी रहे वाईआई खुद 4 रैंकिंग इवेंट करवाता है साल में.
ओके.
और उस रैंकिंग के परफॉर्मेंस के आधार पर आपका नेशनल स्क्वाड बनता है.
ओके.
और नेशनल स्क्वाड में जो टॉप 2-3 टीम्स विच इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट आर कंटिन्यू देयर ट्रेनिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड.
ऑलराइट. जी
सर.
सर जब से आपने शुरू किया था परसू करना या फिर आपने पहले भी वॉटर स्पोर्ट्स देखा होगा तो कितना दूर आ गया है इंडिया मतलब हाउ फार हैज इंडिया कम इन वॉटर स्पोर्ट्स. आई वुड से कि ओवरऑल वॉटर स्पोर्ट्स में हम कहाँ स्टैंड करते हैं अभी.
वाटर स्पोर्ट्स में डेफिनेटली हमारे जो सेलिंग का कंडीशन बहुत अच्छा है और काफी इम्प्रूवमेंट है. पहले ये जो स्पोर्ट्स था इट वॉज लिमिटेड टू द डिफेंस पर्सनल एंड द रिच पीपुल.
ओके. ओके.
क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव.
राइट. राइट.
और जब हमने चालू किया था तो मैं भी इसीलिए कर पाया कि आई वॉज इन नेवी सपोर्टिंग. मगर उसके बाद में जो अभी जो पिछले 10 साल में इम्प्रूवमेंट आया है कई जगह वहां से कोस्टल एरिया से सेलिंग आगे बढ़ी और इनलैंड में आई है।
राइट राइट।
उसमें जैसे फर्स्ट नेशनल सेलिंग स्कूल का 2006 में हमारे यहाँ की जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीमती यशोदा सिंधिया ने स्थापना करवाई थी
2006 में।
हाँ तो इट वॉज द फर्स्ट नेशनल सेलिंग स्कूल केम अप इन भोपाल। और उसमें बेस्ट पार्ट रहा कि हमने जो अपॉर्चुनिटी दी है वो एक लो लेवल के जो कॉमन पीपल्स के लिए, और जो अभी भी यहाँ पे बच्चे उसके उसको फॉलो करते हैं। अभी हैदराबाद में भी हैदराबाद यार्ड क्लब ने सेम पैटर्न पे चालू किया है। बेंगलोर गोवा पुणे इवन बेंगलोर में भी जो सेलिंग हो रही है लेक में ही हो रही है।
ओके कितने स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया जैसे भोपाल ने बना
इस तरह का? ये अभी पहला और आखिरी स्कूल है मगर उसके बाद में कुछ क्लब ने इसको अडॉप्ट किया है।
ऑलराइट
पैटर्न वही है ताकि हम यूथ को ज्यादा अभी जो हमारी इस समय की जो सेलिंग डेवलप कर रही है स्टार्टिंग बाद एज ऑफ 10 इयर्स तो जो बच्चे के पास काफी समय होता है। यही रीजन है कि हमारे पास जो हर्षिता ने एशियन गेम में मेडल जीता इस वक्त 16 इयर्स
देन
सी वन द मेडल। सो दे हैव लाइक आई स्टार्ट एट 28 सो मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन था। और अभी जो सेलिंग में चेंजेस आए नाउ इट बिकम लाइक हॉकी।
ओके
अभी पहले जो
कैसे
हाँ अभी जो पहले बोटे थी वो स्लो बोट थी पावर कम लगता था।
ओके
आजकल स्पीड वाली बोटे एरिया बढ़ गया स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए अब मूवमेंट बढ़ गए उनमें हॉकी की तरह।
राइट
तो देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस इन द सेलिंग बोट्स आल्सो द बोट्स आर वेरी फास्ट नाउडेज।
ओके वी विल स्पीक अबाउट द बोट्स एज वी टॉक मोर। सबसे पहले जैसे मैं अब हम थोड़े टेक्निकलिटीज की बात करते हैं सेलिंग को लेके, जैसे बिकॉज ये ऐसा स्पोर्ट है जो लोग ज्यादा जानते नहीं है तो हम ऐसे शुरू करेंगे कि कोई जब एक यंग बच्चा या बच्ची आता है तो आप कैसे मतलब स्पॉट करते हो कि वो टैलेंटेड है वो सेलिंग के लिए बना है और मतलब वो सेलिंग में अच्छा करेगा? हाउ डू यू नो कि एज अ कोच बिकॉज आप कोच भी बने लेटर ऑन तो उस हिसाब से?
हाँ ना इसमें डेफिनेटली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैं एमपी गवर्नमेंट को जिन्होंने मुझे मौका दिया टू बिकम ए कोच इन मध्य प्रदेश।
जी
बेसिकली आपने सही बताया कि इस स्पोर्ट्स में लोगों को बहुत कम जानकारी और जागरूकता है। जब मैं भी आया तो मुझे बहुत चैलेंजेस देखना पड़े इसके लिए कि मैं किस तरह बच्चों को जोड़ पाऊँ। तो हमने यहाँ पे कुछ समर कैंप से स्टार्ट किया पहले कि बच्चे आए इसमें पहले एंजॉय करें। तो बच्चे आने लगे फिर समर कैंप के बाद हमने हर बड़ी सिटी में जाके टैलेंट हंट और कुछ एग्जीबिशन टाइप सेलिंग बोट का वीडियोस वगैरह बच्चों को दिखाया कुछ स्कूलों में जाके बताया कि दिस इज अ स्पोर्ट्स यू कैन ज्वाइन और उसका रिस्पांस हमें मिलने लगा 11 के बाद में। फिर एक होड़ पैदा हुई हमें ट्रेनिंग कैंप में जो हम समर कैंप करते करीबन 300-400 बच्चे इकट्ठे होते हैं भोपाल में।
ओके
और उन बच्चों में बेसिकली हम यही देखा जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सेलिंग एट द अर्ली एज आई थिंक इट शुड बी स्विमिंग क्वालिफाई बिकॉज हम पानी में रहते हैं तो बच्चा कम से कम स्विमिंग जाना था। उससे दो फायदा होता है, एक तो उसका कॉन्फिडेंस बना रहता है कि अगर बोट पलट जाएगी तो वो घबराएगा नहीं और दूसरा तब उसको ये डर निकल जाता तो पानी से डरना कम हो जाता है। वो जो नॉर्मल चीजें हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चों का ऑब्जर्वेशन कैसा है हाउ दे आर ग्रेबिंग मतलब लर्निंग पावर कितना है उसका टीचिंग आप जो बता रहे हो उनको मेन सेलिंग का यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द नेचर। तो आपको नेचर के सभी एलिमेंट से यूज टू होना पड़ता है पानी है हवा है सराउंडिंग में क्या हो रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब माइंड जो है बहुत शार्प चाहिए। तो बच्चों को हम ज्यादा जो कैंप वगैरह में उनको यही ऑब्जर्व करते हैं कि ये बच्चा चलो कम से कम इसका लर्निंग ठीक है ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को सीख रहा है और उसी तरह के बच्चों को हम फिर राह से पिकअप करते हैं। तो कम से कम एक साल तो उनको सिर्फ बोट का बैलेंसिंग और टेक्निकल जो बोट्स के वर्ड्स रहते हैं या उसके सेलिंग एंगल्स होते हैं जैसे हम बोट के अंदर 10 से 15 साल के बच्चों के लिए ऑप्टिमिस क्लास बोट है इट्स वेरी सेफ बोट।
क्या बोलते हैं सर उसको?
ऑप्टिमिस क्लास बोट।
ओके ऑप्टिमिस
जी हाँ ऑफ कोर्स ये भी एशियन गेम में रही 2014 तक।
ओके ओके,
तो उससे हम बच्चों की ट्रेनिंग चालू करवाते हैं। और जैसे आपने बोला टेक्निकली जो सेलिंग के एंगल होते हैं ये अलग अलग होते हैं। जैसे हमें लगता है कि हवा एक साइड से आ रही है, तो हवा जब साथ में आ रही है तो उसको हम सेलिंग टर्मिनोलॉजी में रन बोलते हैं। जो पीछे से हवा आ रही है, सेल पे हवा चली, बोर्ड चल रही है,
ऑलराइट, जो पीछे से हवा आ रही है उसको हम बोलते हैं
रन पोजीशन। मगर अगर आप गए तो आपको आना भी है, तो उसके लिए हम अगेंस्ट द विंड बोलते हैं उसको बीट,
बीट
BEAT।
ओके,
तो उसमें क्या होता है कि आप एकदम विंड के अपोजिट नहीं आ सकते, तो आपको 45 डिग्री पे विंड को, सेल को सेट करके, बोट को सेट करके विंड के साथ बढ़ना होगा,
ऑलराइट, ताकि हवा को काट सके हम।
हाँ, तो जिगजैग पोजीशन, मतलब 45 डिग्री ऑन, 40 ऑफ, स्टार्बोर्ड पोर्ट, मतलब जो लेफ्ट राइट साइड को बोट को स्टार्बोर्ड पोर्ट बोलते हैं,
राइट राइट,
तो स्टार्बोर्ड टेक, पोर्ट टेक, ऐसे करते हो। और एक होती जब विंड आती है आपके 90 डिग्री से, मतलब अगर हम सेल कर रहे हैं
बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, मतलब
हाँ स्ट्रेट आ रही है, तो उसको जीरो डिग्री बोलते हैं, तो उसको हम 45 पे लेके आते हैं ताकि सेल में हवा भरे।
ओके,
तो गेट द विंड पावर ऑन द सेल, हमें 45 डिग्री पे बोर्ड चलाना होता है व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट द विंड। पर हम विद द विंड आ रहे हैं तो हमारे सेल का पोजीशन लगभग 180 एंड 90 डिग्री होता है, जो पीछे से हवा आती है तो पूरे सेल पे हवा रहती है। ये सब टेक्निकली धीरे धीरे बच्चे इंजॉय करने लगते हैं जब उनकी बोट चलती है। और मेरा भी पहला एम ये रहता है कि लेट हिम एंजॉय फर्स्ट, देन विल टीच हिम द टेक्निकली थिंग्स, कॉम्पिटिटिव सेलिंग कैसे करना है। इट्स अ गुड फन बेसिकली। अगर आप बच्चा जितनी जल्दी एज में सीखे उतना उसके चांसेस इम्प्रूवमेंट के ज्यादा रहते हैं।
कुछ आप सेलिंग के बोर्ड के बारे में बता सकते हैं क्या, मतलब कितनी क्लासेस होती हैं, तो कितनी बोर्ड्स होती हैं और बोर्ड से क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं?
हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्ली एज के लिए जो 10 से 15 साल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑप्टिमिस्ट क्लास बोर्ड ही सेल की जाती है।
ओके,
एज किड्स ग्रोन अप तो उनको फिर अलग अलग बोर्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक जैसे बच्चे 10 साल से चालू किया, 14-15 साल तक आता है तो बच्चा फिजिकली भी डेवलप होता है और मेंटली भी,
right.
तो उसके बाद में हमारे पास बोट है जो इंडिया में हम यूज कर रहे हैं, 29er, 420 एंड लेजर 4.7। तो ये बोट नॉर्मली 15-16-17 साल तक के बच्चे आराम से, 29er 420 डबल एंडर है, 4.7 सिंगल एंडर है। और कुछ बच्चों को हम विंड सर्फिंग में शिफ्ट कर देते हैं उसी समय, जो RS1 है छोटा सेल, मतलब सेल का एरिया जितना ज्यादा रहेगा बोट के अंदर पावर उतना ज्यादा रहेगा। तो बच्चों के हाइट और वेट के अनुसार बोटों को इस तरह डिजाइन किया जाए तो दे कैन हैंडल इन एनी कंडीशंस। और जैसे ग्रोन अप होता है दे विल गो टू सीनियर, यही लेजर 4.7 कन्वर्ट हो जाएगी लेजर रेडियल में, जो वुमेन क्लास है ओलंपिक और एशियन गेम दोनों। और लेजर स्टैंडर्ड, सॉरी, फोर जो बॉयज होगा वो चला जाएगा लेजर स्टैंडर्ड में। सेम 29er जो सेल कर रहा है बच्चा आफ्टर ऑप्टिमिस्ट, पास आउट फ्रॉम द ऑप्टिमिस्ट, दे विल गो इन 49er, अगर लड़की है तो 49er FX में, इससे बिडिंग अप क्लासेस। और जो बच्चे
एक जो सेलर होता है वो या तो 29er चलाता है या तो फिर वो लेजर चलाता है, मतलब आप एक साथ, मतलब एक कॉम्पिटिशन में दो बोट्स पे या फिर क्लासेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, राइट?
नहीं, इट्स नॉट एडवाइजेबल आल्सो, बिकॉज यू लाइक 49er यू नीड ए बैलेंस कोऑर्डिनेशन ऑफ क्रू एंड हेल।
ओके,
देयर बॉडी शुड रिएक्ट लाइक ए सिंगल वन, देन ओनली द बोट विल मूव। इफ यू कीप सेपरेट लाइक इसको साथ इसको कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, यू कैन नॉट परफॉर्म। ऑल
राइट, ओके जी, तो कैन यू एक्सप्लेन, हाँ राइट, बोलिए बोलिए।
हाँ, जैसे 420 क्लास में बताते हैं, जैसे यूथ क्लास वो जैसे इसका जाता है आगे 470 में चले जाते हैं बच्चे।
अच्छा,
तो 470 में भी मेंस एंड वुमेन्स दोनों, बट बोल्ट आर सेम।
ओके,
तो अभी तक हम इंडिया में इन्हीं 6-7 बोल्टों पर ध्यान दे रहे हैं जो हम जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं।
ओके, एंड कैन यू एक्सप्लेन हाउ रेसेस हैपन, मतलब क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं सेलिंग में जो एशियन और ओलंपिक लेवल पे होता है?
जी, रेसेस का पैटर्न पूरा एक ही होता है, जो इसे डिस्क्राइब इन द रेसिंग रूल ऑफ सेलिंग, उसमें किस तरह का कोर्स होना चाहिए, एक रेस कमिटी जो क्वालिफाइड लोगों की अपॉइंट की जाती है और रेसेज जो होती है जैसा आपने बताया पॉपुलरिटी इसलिए नहीं कि वी हैव टू गो अवे फ्रॉम द शोर, मतलब एक दो किलोमीटर पानी में जाके वहां पे कोर्स को लेके आता, कोर्स भी डिपेंड करता है कुछ दिन की विंड कंडीशन क्या है, कितना बड़ा फ्लीट है, जैसे अभी 49er को हम लेंगे तो इनके लिए विंडवर्ड लीवर आना और जाने ही देते हैं, और सेम अगर लेजर और 470 वगैरह तो इनके लिए ट्रिपेजाइज कोर्स या ट्राइंगल कोर्स दिया जाता है।
अच्छा,
तो बेसिकली पानी के अंदर एक बड़े जो एयर बैलून टाइप होता है उसको डाल दिया जाता है, डेट विल बिकम ए मार्क।
ओके,
तो रेस कमिटी जाके उसको एक स्टार्ट लाइन बनाएगी और उसपे स्टार्ट लाइन के बाद में को मार्क नंबर 1, 2, 3, 4 दे विल डिस्क्राइब, दिस इज द पोजिशन यू टू रन 1, 2, 3 राउंड और 4 राउंड, इट विल बी डिस्क्राइब इन द सेलिंग इंस्ट्रक्शन। और रेस स्टार्ट होने के बाद में स्टार्ट सबकी एक साथ होगी एंड द पोजिशन विल बी काउंटिंग एज ए फिनिशिंग पोजिशन। जैसे हर एक चैंपियनशिप में, एक रेस में चैंपियनशिप खत्म नहीं होती, आपको कम से कम 10, 12, 15 रेस पहले ही बता दी इतनी रेसें होना है। एक अगर कोई बच्चा रेस कर रहा है या सेलर रेस कर रहा है तो उसको अपना परफॉर्मेंस 5 दिन तक कंटिन्यूस मतलब मेंटेन करना है कि मैं टॉप में रहूं। फाइनली क्या होता है कि जैसे 12 रेस हुई आपकी या 10 रेस हुई तो आपकी 10 रेस के पॉइंट काउंट किए जाएंगे।
मतलब ये कुछ दिनों में होती है, मतलब एक दिन में नहीं, मतलब एक दो
नहीं, एक दिन में मैक्सिमम 3 रेस से ज्यादा कभी नहीं करवाते हैं।
हाँ, लेकिन इसका रिजल्ट आता है 4-5 दिन के, 4-5 दिन के पूरा समरी पूरा रिपोर्ट का लेके रिजल्ट।
जैसे 12 रेसेस हुई है तो 12 ही रेसेस के पॉइंट काउंट किए जाएंगे जिसके सबसे कम होंगे। अगर एक खिलाड़ी लगातार 1, 2, 3, 4, 2, 1 पे एक पोजीशन फिनिश किया तो उसका एवरेज आएगा 12 रेस का 15-16 पॉइंट, दूसरे का आएगा 16, 17, 18, 19, तो जिसका सबसे कम है वो विनर होगा।
ये बात मैं समझा नहीं, मतलब
जैसे आपकी एक साथ हमारे इसमें एक साथ 50 बोट पानी में है, 60 बोट पानी में, 40 बोट पानी में, तो उन सबको एक साथ रेस करना है। ये बीट नहीं होगी कि पहले 8 में से 4 को हम बीट आउट कर देंगे और उसके बाद में 4 ही रेस करेगी, यही 50 बोट को आपको 12 ही रेस साल में एक साथ सेल करना है, या 40 बोट को एक साथ सेल करना है, और 40 ही बोट का हर एक रेस का रिजल्ट काउंट होगा एट द एंड। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल ए बोट ने एक रेस में पोजिशन 1 लिया, दूसरी में भी 1 लिया, तीसरी में भी 1 लिया, तो उसके टोटल 12 रेस के पॉइंट हो गए 12। वही दूसरे ने 2 पहला रेस में दूसरा फिनिश किया, दूसरे में 10वां किया, तो 2 ही रेस में उसके 12 हो गए। तो ऐसे ही 12 ही रेस का एक एवरेज निकालेंगे जिसका सबसे कम पॉइंट होगा। और इनमें चूंकि ये गेम जो है नेचर ज्यादा इफेक्ट करता है इसके ऊपर, या वो पानी में कोई बोट फेलियर वगैरह हो गया तो एक रेसिंग रूल में प्रोविजन है कि जो आपका वर्स्ट रेस है वो एक सभी का एक रेस काउंट नहीं होगा। या कोई कैप्साइज हो गया प्लेयर या कुछ टूट फूट हो गया तो ये नहीं कि उसके कारण उसका पूरा चैंपियनशिप खत्म हो जाए, तो वो पहले से ही सेलिंग इंस्ट्रक्शन में मेंशन कर देता है कि 12 रेस की सीरीज में आपकी 1 रेस या 2 रेस डिस्कार्ड होंगी, अगर जैसे 12 में 10 ही आपकी बेस्ट काउंट की जाएंगी टू मेक द फाइनल रिजल्ट। इट्स वेरी फेयर आई थिंक बिकॉज इट इज फॉर एवरी वन, और किसी का भी कोई दिन खराब हो सकता है।
बिल्कुल, मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया शायद थोड़ा सा कि एक रेस जब होती है मतलब उसके बाद आपको जो पॉइंट मिलता है तो सबसे कम वाले को घोषित कैसे करते हैं, विनर क्यों करते हैं?
अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम इसको 12 रेस की जगह हम 3 रेस कर रहे हैं, जैसे मिनिमम 10 रेस होती है, मगर मैं आपको समझाने के बाद 3 रेस हम कर रहे हैं, एक बच्चे ने 1 रेस में पहला फिनिश किया आउट ऑफ और 10 बोट है, दूसरी रेस में उसने 5वां किया, तीसरी रेस में उसने 2 किया, तो इसके टोटल पॉइंट पर 5, 2 and 1, 5, 2, 7, 8 पॉइंट आफ्टर ऑन कम्प्लीशन ऑफ 3 रेसेस। दूसरे ने फिनिश किया 2, 2, 2,
ऑलराइट,
उसके हुए 6 पॉइंट, तो जिसने अपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है हालांकि उसने रेस नहीं जीती,
मतलब पोजीशन के हिसाब से आपको पॉइंट मिलता है।
हाँ
ओके ओके,
तो जो जिसके सिक्स पॉइंट होंगे वो दो फर्स्ट मारने वाले से ऊपर चला जाएगा
okay.
और okay. वहीं अगर किसी का तीन तीन दो है तो उसके भी आठ पॉइंट होंगे, मगर उसने फर्स्ट मारा तो एवरेज में
right.
उसका बेस्ट वन है तो उसको ऊपर कर देंगे. इस प्रॉपर इसका सिस्टम है जो रेसिंग रूल ऑफ सेलिंग में मेंशन किया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट द पॉइंट, हाउ टू गिव डिस्कार्ड, हाउ टू ब्रेक ए टाई अगर दोनों का टाई हो गया है तो.
अच्छा रूल की बात रही
जी
जी भाई, कुछ आप बोल रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए.
हाँ वही रेसिंग रूल ऑफ सेलिंग जो हमारी वर्ल्ड सेलिंग डिजाइन करती है और हर चार साल में पब्लिश भी करती है
okay.
और उसी के आधार पे जो भी रेसेस होती है इट इज मॉनिटर्ड बाय द इंटरनेशनल ज्यूरीज एट द टाइम इन वाटर
ओके.
तो बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको प्रोवाइडेड भी किया गया पानी के अंदर, आप जैसे स्केलिंग नहीं कर सकते या पंपिंग करके बोट को एक्स्ट्रा स्पीड नहीं दे सकते, ये सब ज्यूरी ऑन वाटर अप्लाई उनका ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी इलीगल मींस बोट की स्पीड जनरेट करने के लिए नहीं ले रहे हैं बच्चे
okay.
या प्लेयर्स
ओके सेल के बारे में बताइए, जो सेल होती है मतलब व्हाट द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फॉर अ सेलर टू कंट्रोल इट, व्हाट द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज फॉर अ सेलर इन सेलिंग.
Yeah, definitely. Sailing sail is the engine of the boat.
Okay.
So, जब हम sail करते हैं तो मैंने जैसे पता we are fighting against the nature and nature is always unpredictable. So as a sailor, every time you have to tackle the natural forces like wind, wave, tide, and sometime you will may face a storm in the water. बट अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई इससे हमें पहले पता चल जाता है कि मौसम वाज गोइंग टू बी डिटेरियरेटेड.
अच्छा
बट मैं मानता हूँ कि जो चैलेंज है सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है आपका हाई विंड एंड बिग वेव
ओके.
उसमें बोट का पूरा लाइक हैंडलिंग विल बी बिकम शार्प फास्टर, वेव के ऊपर आपका बैलेंसिंग मीन जब आपको बड़ी वेव आएंगी साइड से आएंगी सामने से आएंगी तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन वाटर और आपको अपना फिट परफॉर्मेंस को भी कंसिस्टेंस रखना है तो right. आपको फिजिकली बिल्कुल फिट रहना है. जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जर्वेशन, अगर बच्चा चारों तरफ अपना ध्यान रख रहा है कि वेव आ रही है हमें कब हिट करेगी उसका कैलकुलेशन वगैरह है ऑटोमेटिकली स्लोली स्लोली व्हेन गेट यूज्ड टू द प्रैक्टिस दे विल बिकम स्ट्रॉन्गर. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रेसिंग के समय जो बिग बड़ी वेव आती है और विंड ज्यादा रहती है इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी सेलर. उस सेल
विंड आती है मतलब अगेंस्ट आ रही है जो
विंड का स्पीड ज्यादा होगी जैसे 20 नॉट 25 नॉट 30 नॉट इससे व्हेन यू नीड ए पावर यू नीड ए मसल्स यू नीड ए हैंडलिंग ऑफ द बोट एवरीथिंग एंड टेक्निक technically if you are very strong when you are able to sail in the lowest wind the best with the best speed so dono hi lowest wind mein bhi aapko pura technical paya jata hai aur jab wind badhti hai to aapka pura strength aur technique dono aa jati hai isme
right. to ye bataiye ki jo sailor hota hai jo sailing kar raha hai to वो खड़े होकर करता है और उसने कुछ रोप्स वगैरह पकड़ रखती हैं जिससे वो कंट्रोल करता है सेल को राइट.
नहीं खड़े होके कुछ बोटों में करता है
ओके
okay. तो जैसे लेजर में बैठ की होती है सेलिंग
ओके
okay. हमारी कुछ बोटे 470 जिसमें एक दो क्रू होते हैं
okay.
एक ट्रपीज में रहता है उसका जिसको खड़ा रहना पड़ता है
right.
ताकि मैक्सिमम लिवरेज मिले. 49er में दोनों ही पार्टनर ट्रपीज पे थे दोनों ही खड़े रह के करते हैं सेलिंग
ओके.
विंड सर्फिंग में थ्रू आउट द टाइम दे हैव टू से विद द अप पोजीशन मगर लेजर में आपको कभी खड़ा होना नहीं रूल अलाउ भी नहीं करता जो आपके क्लास रूल है
ओके okay. मतलब हर क्लास में अलग अलग तरीके से पोजीशन रहती है
अलग अलग की डिजाइन है बोट जो आपको
okay.
और इसमें जैसे जो खड़े रह के करते हैं इनका एक ट्रपीज या हार्नेस पहनते हैं जो हमेशा मास से अटैच होता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को लिवरेज ले सके हाइट का और पानी के ऊपर बॉडी को रख के बोट को बैलेंस कर सके
ओके. सर इसमें हाइट का कोई रोल होता है या फिर वेट का भी?
ऑफ कोर्स वेट जैसे लेजर क्लास बोट है, हमारे जो कोई भी बोट है उसका पूरा जो वेट लिमिटेशन नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड वेट माना जाता है कि इस वेट के अनुसार और इस हाइट पे आप इस बोट को कंट्रोल करो, क्योंकि जो सेल का एरिया है, जो सेल का एरिया पावर देता है, उसको काउंटर करने के लिए आपको इतना वेट चाहिए।
अच्छा,
अभी जैसे मैंने आपको बताया ट्रैपीज़ बोट के ऊपर, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट या 6 फीट 3 इंच है तो आप उतना ही पानी के ऊपर आपकी बॉडी पूरी पैरेलल रहेगी।
ओके,
और जितना आप बोट को काउंटर करेंगे, आपकी विंड फोर्स आपके सेल को प्रेस कर रहा है अदर साइड, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द विंड फोर्स एंड मेकिंग द बोट बैलेंस। और जब हम अगेंस्ट द विल सेल करते हैं बीट में, तो बेसिक एम होता है बोट टू रिमेन फ्लैट, तो उसके लिए
टू रिमेन फ्लैट।
या
ओके,
तो जितना बोट फ्लैट होगी उतना फास्टर जाएगी आगे।
ऑल राइट।
अगर वो थोड़ा सा लीवर जाएगी तो फिर उस स्पीड कम होने लगेगी, या विंडवर्ड जाएगी तो स्पीड कम होने लगेगी।
वही मेरा दूसरा क्वेश्चन था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्पीड कैसे हम इसमें मेंटेन करते हैं हाई स्पीड, और इसमें ब्रेक्स कैसे लगाते हैं, व्हाट इज देयर इन द प्रोविजन ऑफ ब्रेक और नॉट। आई मीन मैं बहुत ही लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूं।
नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही बोला। ब्रेक मीन्स द पावर ऑफ बोट इज सेल, जितना आप उस सेल को ट्रिम करके पावर ले रहे हो, जैसे आपको लगता है बोट रोकता सेल को छोड़ दो या डिपावर कर दो बोट को। जैसे मैंने आपको बताया था अगेंस्ट द विंड वी आर सेलिंग अप टू 45 डिग्री, आप 45 डिग्री से आप 30-20 पे आ जाएंगे तो अपना बोट रुक जाएगी।
ओके,
बिकॉज देयर इज नो पावर ऑन द सेल दैट टाइम।
ओके, एंड व्हेन द विंड इज विद अस देन व्हाट इज द एंगल ऑफ द सेल
विद अस मींस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड से रन,
कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड रन।
या
then what is the position of the sail, angle of the sail?
It will be 180 degrees, 180 to 190, yeah, 180 to 190, depend upon the boat again. Laser में 180-90, 49er में इसका angle कम हो जाएगा, because the much flatter boat से move faster. 49er is the fastest boat at present in India.
Right. And 49er, there are two members, two persons. And what is the sitting position in 49ers? Or
they both are standing positions.
Both are standing and both are opposite to each other on the boat?
Same direction. Always they remain in same direction.
Same direction. Okay.
Yeah.
Standing next to each other.
Yeah.
Okay. And otherwise, if you are sailing alone?
So alone is the like in you are sailing against the सेल, तो नॉर्मली द क्रू पर्सन इज सिटिंग द पोजिशन अगेंस्ट द सेल ऑलवेज, चाहे रन हो या बीट हो, जिस साइड में सेल उसका अपोजिट उसका हैंडिंग वाला होगा या प्लेयर होगा।
राइट। सर स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, बिकॉज मुझे याद है कि जब 2015 में आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि हर्षिता में बहुत स्ट्रेंथ है, और वो उस टाइम 12 साल की थी, और फिर जब वो 16 साल की हुई तो एशियन गेम्स मेडल जीत गई वो, तो आपने उसी टाइम बोला था कि इसके अंदर सबसे बड़ी की क्वालिटी जो है वो स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ कैसे काम करता है सेलिंग में, और कैसे क्या चाहिए होता है उसको?
स्ट्रेंथ इज ऑफकोर्स वन द मेजर पार्ट इन एनी स्पोर्ट्स, और सेलिंग में भी मैंने आपको बताया यू हैव टू फेस ऑल द कंडीशंस। इफ यू आर लकी इनफ यू लाइट विंड है, आप लाइट हैं तो यू मे सर्वाइव, बट 5 डेज वेदर विल नॉट रिमेन सेम, दिस ऑलवेज हैपनिंग। अगर आप 5-10 knots की विंड यार ओके, व्हेन विंड इंक्रीज अप टू 10-15 knots और 20 knots और 25 knots, तो फिर काउंटर द बोट बैलेंस यू हैव टू पुट योर बॉडी मोर अवे फ्रॉम द बोट, दैट टाइम यू नीड ए स्ट्रेंथ, यू नीड ए स्ट्रेंथ। सेलिंग इज ओनली स्पोर्ट्स फॉर वेर यूर ऑल मसल्स आर वर्किंग
Okay.
All the times, in any condition. Even you are sailing low wind also, your muscles are active.
Right.
So, to counter the power of the sail, we need a strength. और अगर strength, तो हम बच्चों को अभी जो करवाते हैं, we are putting like back muscles, stomach, thighs, forearms, and of course, they have to be mentally very strong.
Right.
The reason behind it, they are alone in the boat.
Right.
And they have to take करेक्ट डिसीजन इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम.
राइट,
वहां पे उनके आसपास कोई नहीं होगा. एंड दे रियलाइज ऑल्सो इफ दे आर रॉन्ग दे कम एंड से आई मेड दिस मिस्टेक. देर इज अ रीजन सेलिंग इज वेरी गुड फॉर द यंग सेलर्स, यंग
पीपल.
डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज इम्प्रूव्ड अ लॉट कम्पेयर टू एनी अदर स्पोर्ट्स इन सेलिंग. दे लर्न द विंड पैटर्न, दे लर्न स्लोली स्लोली अंडरस्टैंड ओ आई हैव मेड दिस मिस्टेक, माई सेल वाज लूज, आई कुड नॉट प्ले द मैन, आई कुड नॉट सी माई अपोनेंट वेयर ही वॉज गोइंग.
Mm-hmm.
What he has seen, they have to keep observing where the wind pattern, where the wind is coming,
mm-hmm.
and how I get the best wind.
Right. So, what are the other key decisions that a sailor has to take? At that moment, very quickly. Like, what are the challenges when you are sailing actually, or क्या क्या challenges होते हैं when आप sail कर रहे हैं? और आपको वो डिसीजन लेने पड़ रहे हैं जो आपको मकसद है जीतने का, तो जीतने के लिए आपको प्रोपेल करें.
जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहला तो यू टू टेक वेरी गुड स्टार्ट इन द रेस. लाइक 50 बोटल 50 को एक साथ चलना है, तो उसमें आपको सबसे पहला डिसीजन होगा कि मेरे को एक वहां पे करीबन आपकी 100-200 मीटर की लाइन बना दी, इमेजिंग लाइन है, उसमें आपको अपनी बोट को रोकना है और उसके बाद में करेक्ट एंड से स्टार्ट लेना जहां विंड प्रेशर ज्यादा है, और उसके बाद में विंड पैटर्न को समझ के उसको कंटिन्यू यूज करना है टिल द टाइम यू आर नॉट फिनिशिंग द रेस.
ओके,
और अगर आप स्टार्ट लाइन से पिछड़ गए तो जब आपका 50-60 बोट का बंच है तो यू विल नॉट गेट द क्लियर विंड, दैट इज अनदर पार्ट. अगर बड़ी बोटों के साथ बड़ा, ये सबसे ज्यादा मतलब हमारे इसमें सेलिंग में बोला जाता है कि विन, इफ यू वांट टू विन द रेस विन द स्टार्ट फर्स्ट.
ओके,
फर्स्ट स्टेज विन द स्टार्ट, देन यू विल गेट थ्रो आउट द, यू विल बी हेड अमंग द अदर बोट्स. यू आर फ्री टू टेक योर ऑन शिफ्ट, यू आर फ्री टू टेक योर ऑन डिसीजन, मगर जब आप किसी बंच में फंस जाओगे तो देर यूर नो ऑप्शन टू कंटिन्यू, पर यू कैन नॉट प्ले योर शिफ्ट, यू कैन नॉट प्ले योर टैक्टिक्स.
So the first step जो होता है वो स्टार्ट तक पहुंचना टाइम पे,
नहीं स्टार्ट टाइम से लेना,
स्टार्ट टाइम से
स्टार्ट लेना.
ओके ओके राइट. तो स्टार्ट के लिए क्या प्रोसीजर होता है, उसमें कोई विस्लिंग होती है, कैसे स्टार्ट होता है?
हाँ, विस्लिंग होती है, फ्लेक्स रहते हैं, साउंड सिग्नल्स होते हैं,
ऑलराइट,
और टाइम होता है. जैसे कि आपको एक वार्निंग सिग्नल जाएगा 5 मिनट के पहले, तब आपको बताया जाए कि अभी आपका कोर्स रेडी हो गया, ये क्लास का स्टार्ट होने वाला, तो उस क्लास की बोटें सब लाइन पे आ जाएंगी.
ओके,
फिर 4 मिनट में एक वार्निंग दूसरा सिग्नल जाएगा, प्रोपर्टी सिग्नल बोलते हैं जिसको.
ओके,
जो बताएगा कि अभी आपकी रेस स्टार्ट होने में 4 मिनट बाकी है. तो उस ड्यूरेशन में जो भी प्लेयर्स होते हैं अपनी लाइन और विंड का पैटर्न चेक करते हैं कि किस साइड में विंड ज्यादा है, मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ जाना है.
अच्छा अच्छा.
फिर जस्ट बिफोर 1 मिनट एक विसिल और सिग्नल फिर आएगा कि अभी 1 मिनट बचा है.
ओके,
दैट इज अ क्रूशियल फॉर एनी सेलर्स.
ऑलराइट,
तो इन दैट 1 मिनट दे हैज टू मेंटेन हिज पोजीशन. एक तो उसको लाइन के ओवर नहीं जाना है, लाइन के नीचे रह के अपना स्टार्ट बेस्ट स्टार्ट लेना है.
राइट. सो आपने एक बार और मुझसे बात की थी कि सेलिंग इज एसेंशियली 3 चीजों का बैलेंस है, बोट, वाटर और विंड का, और ह्यूमन बॉडी का. तो उसको अगर जरा एक्सप्लेन कर सके आप, कैसे सिंक में रहना चाहिए और कैसे उसके लिए क्या काम करना पड़ता है कि इसे ये चारों एलिमेंट सिंक में रहे.
जी, इट्स ओनली कम थ्रू योर प्रैक्टिस. योर बोट, योर बॉडी एंड वाटर शुड बी इन द सेम डायरेक्शन व्हेन यू आर सेलिंग. मतलब जो हम बॉडी से रिएक्शन कर रहे हैं, बोट रिएक्ट हो रही है, और जैसे वेव है तो वेव का एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है. कई बार वो साइड से आती है, कई बार बो से आती है, कई बार बड़ी होती है, कई बार छोटी होती है, कई बार उनका वेव का जो एक तो बड़ा वाला था रोलर टाइप जो अभी बॉम्बे में आ रहा है, या जो है एक छोटे छोटे चॉप्स होते हैं, तो हरेक के ऊपर स्टेयरिंग जो बोट का हैंडलिंग वो डिफरेंट हो जाता है. तो बेसिक हमारा फोकस रहता है जब भी हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं उनका यही रहता है कि किसी भी हालत में आपको इन सब चीजों को गो थ्रू जाना है. ऑलवेज यू मे फेस एनी सिचुएशन एनी टाइम. वर्ल्ड वाइज जैसा अभी मैं यहाँ पे भोपाल में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इज इन द लेक. यहाँ पे एडवांटेज ये है कि एक तो बच्चा शुरू से डरता नहीं है,
राइट
लेक में पानी काम रहता है तो उसको जल्दी सीखने लगता है। दूसरा लेक का फायदा है कि इससे सराउंडेड बाय द वेरियस, आइदर कोई साइड में बड़ा बिल्डिंग होगा या तो जो विंड डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड आता है।
ओके,
तो बच्चा विंड शिप जल्दी सीखता है लेक में।
ऑल राइट
मगर वहीं ये सी में जाएगा तो इसको सी का जो पैटर्न टोटली डिफरेंट है, वहां पे जो विंड पैटर्न होता है वो, जैसे यहाँ पे अगर इनको छोटे छोटे शिप लेना हो तो वहां इनको बड़े लेना होते हैं। और वहां दूसरा चैलेंज होता है वेव के ऊपर बोट को राइड करना।
राइट, एक बार आपने बताया था कि हम चॉपी वाटर कुछ होता है और
जी चॉपी
चॉपी वाटर जो सी में मिलता है।
हाँ,
सी वाटर में
तो सी में हमें चॉपी मिलता है। चॉपी मतलब जो छोटी वेव को चॉप्स बोलते हैं।
ओके,
और जो वही उसका अगर दायरा बढ़ जाएगा तो उसको वेव बोलने लगेगी, जैसे रोलर टाइप आने लगेगी बड़ी बड़ी।
ऑल राइट उसको क्या बोलते हैं हम, रोलर वेव्स?
नहीं, बिग वेव बोलते हैं।
बिग वेव्स, ओके।
हाँ, तो उन्हीं पे अपनी बोट को बैलेंसिंग करना और हैंडलिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम लेक टू सी एंड फ्रॉम चॉपी टू द बिग वेव। डायरेक्शन ऑफ द वेव, अगर वेव आपके बो पे आ रहा है या आपके साइड से आ रहा है तो आपको उस समय क्या करना है, दिस ऑल कम थ्रू प्रैक्टिस। तो यही रीजन है कि जब मैं अपने बच्चे जो भोपाल में आते हैं इनको मैं 3 से 4 महीने बॉम्बे या चेन्नई ले जाके ट्रेनिंग करवाता हूँ ताकि दे यू गेट यूज्ड
टू द
बिग वेव एंड सी कंडीशन। और वहां पर उसके अलावा इनको एक चीज और ध्यान रखना होती है कि टाइड, समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है अप एंड डाउन,
राइट
तो उसमें भी इनको अपनी पोजिशन डिटरमाइन करना पड़ती है कि ये है मुझे अभी लो वाटर चल रहा है, हाई वाटर चल रहा है, मुझे अपनी बोट कहाँ पोजिशन करना है। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ टैक्टिक्स।
ओके, इसमें सर रिस्क फैक्टर में बात कीजिए, मतलब रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है बिकॉज ऑफ स्विमिंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्विमिंग आनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन और भी क्या रिस्क अटैच्ड हैं सेलिंग में?
आई डोंट थिंक इससे स्पोर्ट्स, ऑल द स्पोर्ट्स हैव सम शॉर्ट ऑफ रिस्क।
ओके,
बट ऐसा मीन्स जहां भी रेसेस वगैरह होती है वी आर पुटिंग ऑल द रेस्क्यूज एंड एवरीथिंग, तो अभी तक तो ऐसा मैंने नहीं देखा। हाँ, जब ऑल ऑफ सडन कोई क्लाइमेट खराब हो जाता है तो बेस्ट पार्ट है कि जो बोट से हम बच्चों को पहले दिन से ही बोलते हैं कि एट एनी कॉस्ट यू विल नॉट लीव द बोट।
ओके,
बच्चे का लाइफ जैकेट रहता है या जो भी बड़े बच्चे सब ऑलवेज दे हैव टू वियर द लाइफ जैकेट।
ओके,
वो दूसरा जो बोट्स रहती है दे हैव ए बाइंसिस, अगर आपको कुछ टूट फूट भी हो गया तो बोट विल कीप फ्लोटिंग।
ऑल राइट
मगर आपको यही है कि अगर बहुत ज्यादा वेदर खराब हो गया तो रेस्क्यू में डिले हो सकता है मगर रिस्क आर वेरी लेस।
राइट और लाइक व्हाट आर द गियर्स दैट दे पुट ऑन द सेलर्स, क्या पहनते हैं वो सेलिंग करते वक्त, ऐसा कोई पर्टिकुलर गियर होता है?
लाइक अगेन डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन।
ओके,
जैसे कि मैंने आपको बताया लेजर में एक हाइकिंग शॉट बोलते हैं जो मतलब जहां सबसे ज्यादा थाई यूज होती है लेजर के अंदर, तो वहां पे वो पैडेड होता था कि जो यहाँ की स्किन वगैरह कट पिट ना हो।
ओके,
और वहीं हम अगर बड़ी बोट में 49er इसमें जाएंगे तो उनको एक हार्डनेस जो रहता है इससे पूरी बॉडी को, जैसे अपना आपने देखा होगा ना इसमें रेस्क्यू करते समय उसमें लटका देते हैं।
जी
ऐसे ये मार्क से अटैच रहता है टू बैलेंस द बोट, तो इसमें उसमें एडजस्टिंग वगैरह रहती है। मगर हम अब्रॉड जाते हैं तो वहां के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वेट वेदर या ड्राई सूट वगैरह पहनना पड़ता है। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से कम है या 5-6 डिग्री है तो ड्राई सूट वगैरह जो पूरा बॉडी को वार्म रखता है।
राइट,
और अगर 10 से 15 डिग्री है तो हम वेट सूट वगैरह से पहन के उसको मतलब इसे मेंटेन, हमारी बॉडी उसके यूज टू नहीं है बेसिकली। और वहां का पानी कंपेयर टू इंडियन वाटर ज्यादा कोल्ड होता है यूरोप में। अब यूरोप में कहीं जाएंगे तो हमारे जो सेलर्स है दे ऑलवेज वियर वेट सूट।
Okay.
जब तक कि वहां का टेम्परेचर +25 डिग्री ना हो।
राइट,
बट ऑफकोर्स लाइफ जैकेट इज मैंडेटरी इन ऑल द कंडीशन, वेदर इज हॉट कोल्ड।
And so what is the right age to start? I know I have spoken ki jitna early start kare, but what is the right age to start sailing?
I think should be 10 or maximum 12.
Okay. जब स्ट्रेंथ बिल्ड होना शुरू हो जाता है बॉडी में,
हाँ बच्चा समझने लगता है उस समय, और उससे ज्यादा बच्चे का माइंड को मतलब डेवलप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए। मतलब सेलिंग में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है हैंडलिंग की, इससे इन्हीं बेसिकली मैंने पहले मेंशन किया था कि ये गेम मेंटली तो ही सी, मेंटली के साथ साथ आपको टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा।
राइट,
हर एक बोट का पार्ट्स आपको कितना रडर का मूवमेंट करना है, क्योंकि एवरीथिंग यू हैव टू डू इन बोट।
राइट राइट,
और कोई टाइम बाउंड नहीं है दूसरा, आपको विंड को जज करना है, वाटर को जज करना है, यू आर अलोन इन वाटर, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बच्चे में डेवलप करना है, उसको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो वी विल गेट द हायर एज, इट विल टेक टाइम।
राइट, and how much time does it take for a young sailor who has just joined an academy to become a professional sailor? Kitna time lag jata hai usko pura sab kuch hone karne mein, sari orientation wagera mein, knowledge gain karna wagera, ye sab karne
mein? I think 6 months to 1 year.
6 months to 1 year. Okay,
yeah, if he's giving his 100%. Or again, there some children are slow learners, some are fast.
Yeah, yeah, right.
So those who are more attentive and learning, they may get the skill of sailing in 1 year.
Okay.
So that is the reason we are focusing on 10 years. So 10, 12, 13, 14, 5, 15, he will be perfect.
Right.
And the boat which is, I mentioned, Optimus class.
Right.
In India, we have around national, around 150 Optimus boat on the line, at the time of this. 150 boats, when a child goes, it feels like that I have to compete with so many children.
Right.
Then you start thinking. So, first time, there is no one but if a good child can become a national champion in 2-3 years.
Okay.
So that was Girdhari Lal Yadav with his insights on sailing. Hope you enjoyed listening to it, and don't forget to tune in for the next edition of Force Post Masterclass. Until then, stay safe and goodbye.